राधिका और माधव की उस मुलाकात को कुछ दिन बीत गए थे। दोनों कहीं ना कहीं उस मुलाकात को भूल नहीं पाए थे, पर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जी रहे थे। शाम का वक्त था। दिल्ली का लोकल मार्केट लोगों से खचाखच भरा हुआ था। फल सब्जी वाले अपनी अपनी रेड़ियां लगाए खड़े थे। साथ ही चाउमीन, मोमोज, गोलगप्पे, आइसक्रीम और ऐसे ही अन्य फास्ट फूड की रेड़ियां भी लगी हुई थीं। भारी संख्या में लोग वहां मौजूद थे। कुछ फल सब्जी की खरीदारी कर रहे थे तो कुछ पेट पूजा में लगे हुए थे। अलग अलग स्वाद को चखने को तत्पर दिख रहे थे। कुछ सिंगल थे, कुछ कपल्स तो कुछ ग्रुप में वहां आए हुए थे। कान पर फोन लगाए माधव किसी से बात करते हुए वहां से गुजर रहा था, जब किसी की जानी पहचानी सी आवाज उसके कानों तक पहुंची और उसके आगे बढ़ते कदम रुक गए। उसकी निगाहें आवाज की दिशा में घूम गईं। हालांकि उस शख्स की पीठ उसकी ओर थी, पर वो उस आवाज़ को पहचान गया था और टकटकी लगाए उसे देखने लगा था। भैया, बहुत ज़्यादा बता रहे हैं आप। दो दिन पहले तो मैं 30 में लेकर गई थी और दो दिन में सीधे भाव डबल कर दिया। सही से लगा लीजिए, वरना आपकी रेड़ी पर आना बंद करना पड़ेगा मुझे। अगर आप अपने रेगुलर कस्टमर के साथ भी ऐसे करेंगे तो मुझे मजबूरन किसी और जगह देखना होगा। इसमें नुकसान आपका ही है, तो सोच लीजिए। जाने वो भाव कम करवा रही थी या उस रेड़ी वाले को डांट रही थी। बेचारा रेड़ी वाला डर गया और तुरंत ही अपने पक्ष में सफाई पेश करने लगा। मैडम, आप रेगुलर कस्टमर हैं इसीलिए इतना बता दिया, वरना पूरे मार्केट में घूमकर देख लो, हमारे जितने रेट में कोई नहीं बेच रहा। मार्केट में इसका भाव बढ़ गया है, आपको 60 में दे रहे हैं, उसमें हमें ही दो पैसे की बचत नहीं हो रही। आपसे पुरानी जान पहचान है इसीलिए फ़ायदा छोड़कर कम रेट में आपको दे रहे हैं। और क्वालिटी भी तो देखिए मैडम, ऐसे लाल ताज़े रसदार टमाटर पूरे बाज़ार में आपको इस दाम में कहीं नहीं मिलेंगे। भैया, सब जानती हूँ मैं कि मंडी में टमाटर का क्या भाव चल रहा है और आपको कितना फ़ायदा और नुकसान हो रहा है, इसीलिए अब बहस छोड़िए और 45 लगा दीजिए तो 2-3 किलो ले लूँगी। मैडम, 45 में तो नहीं हो पाएगा, बहुत कम रेट लगा लिया आपने, कम से कम 55 दीजिए। मैंने कह दिया 45 तो 45। चलिए ना, आपकी ना हमारी, 50 में ले जाइए। नहीं, 45 से 1 रुपया ज़्यादा नहीं दूंगी मैं, अगर देना हो तो दो, वरना मैं कहीं और देखती हूँ। अपनी जिद पर अड़ी वो लड़की झुकने को तैयार नहीं थी। उस सब्जी वाले ने अब दूसरी तरफ रखे टमाटरों की ओर इशारा करते हुए कहा, मैडम 45 में तो ये बेच रहे हैं। मुझे ये सब नहीं पता, मुझे यही वाले टमाटर लेने हैं, वो भी इसी भाव पर। रोजाना यहाँ आती हूँ इसीलिए आप अब मुझे लूटने में लगे हैं। देना है तो कहिए, वरना सब्जी वालों की कमी नहीं है यहाँ। उस लड़की के आखिर में वो सब्जी वाला झुक ही गया। जान पहचान वालों को लोग ज्यादा लूटने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं ये तो रोज हमारे ही पास आता है तो कहीं और जाएगा नहीं, और इसी बात का फायदा उठाने की कोशिश वो भी कर रहा था कि 2-4 रुपए ज्यादा कमा लेगा। पर उसका ऐसी लड़की से पाला पड़ा था जो बार्गेनिंग की क्वीन थी। वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुई और कहीं उसकी रेगुलर कस्टमर किसी और के पास न चली जाए, इस डर से वो सब्जी वाला झुक गया। पर अब भी वो खुद की बड़ाई करने से बाज नहीं आया। ले लीजिए मैडम, आप इसी दाम पर ले लीजिए, आप रेगुलर कस्टमर हैं इसीलिए आपके लिए थोड़ा अपना नुकसान भी सह लेंगे, वरना आपके अलावा किसी को इस दाम ने नहीं दिया है। जंग्य भरी मुस्कान उस लड़की के लबों पर उभर आई। उसने टमाटर छांटकर टोकरी में डाले और जैसे ही पैसे देकर टमाटर लेकर जाने को पलटी, किसी की जानी पहचानी आवाज़ उसके कानों में पड़ी। राधिका? जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, जो लड़की अभी उस सब्जी वाले से मोलभाव कर रही थी वो राधिका ही थी। किसी ने पीछे से उसे पुकारा था। एक जान पहचानी सी आवाज़ राधिका के कानों में पड़ी और उसके आगे बढ़ते कदम ठिठक गए। वो चौंकते हुए पीछे को पलटी और नज़रें सीधे सामने खड़े माधव के चेहरे पर जा ठहरी। उसकी आंखों की पुतलियां आश्चर्य से फैल गईं और मुंह हैरानी से खुल गया। आप? जी मैं, जानती हैं आप मुझे? माधव ने हामे सिर हिलाते हुए सवाल किया। राधिका अब तक खुद को संभाल चुकी थी। माधव के सवाल पर उसने सहजता से जवाब दिया, जी आप माधव हैं, मेरी फ्रेंड अंजलि के हस्बैंड के दोस्त। राधिका का जवाब सुनकर माधव के चेहरे पर कुछ अजीब से भाव उभर आए। उस शादी में मिलने से पहले भी हम कहीं किसी और रिश्ते के जरिए मिले हैं, पर शायद सालों बीत गए इस बात को, इसीलिए आपको याद नहीं। एक साया सा राधिका के चेहरे पर आकर गुजर गया। कुछ पुरानी यादें जहन में ताज़ा हो गईं, जिन्हें वो सालों से भुलाने की कोशिश में लगी थी और कुछ हद तक कामयाब भी हो गई थी। पर अचानक माधव के सामने आने पर वो सभी यादें यूं ताज़ा हुईं मानो कल ही की बात थी जब वो सब घटित हुआ था। पल भर को राधिका उसका चेहरा ही देखती रह गई। याद है मुझे वो मुलाकात भी और वो रिश्ता भी जो जुड़ने से पहले ही टूट गया। अजीब सी चुभन का एहसास था उसके शब्दों में। पल भर को माधव चकित सा उसे देखता ही रह गया, फिर हल्की मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए बोला, जानकर अच्छा लगा कि आपको मैं अब भी याद हूँ, वरना उस दिन जैसे शादी में आपका व्यवहार था मुझे तो लगा कि आप मुझे पहचान ही नहीं सकी। राधिका उसकी बात सुनकर फीका सा मुस्कुरा दी। कैसी हैं आप? पल भर ठहरने के बाद माधव ने सवाल किया। फॉर्मैलिटी को निभाते हुए राधिका फीका सा मुस्कुरा दी। कैसी लग रही हूँ मैं आपको? सवाल के बदले सवाल आया था। माधव ने ही एक नज़र उसे देखते हुए जवाब दे दिया, दिख तो ठीक ही रही है और पहले से काफ़ी बदली हुई भी लग रही है। राधिका ने तुरंत ही उसकी बात की सहमति में सिर हिला दिया। जी, अब मैं वो 20-21 साल की अलहर चंचल लड़की नहीं रही ना। किस्मत की आजमाइशों ने परिपक्व बना दिया है। वक्त की मार से रेशमी बाल अब मकड़ी के जाले बन गए हैं। जिंदगी के संघर्षों की थकान से चेहरा कुंभला गया है। पहले से मोटी हो गई हूँ और आम शब्दों में कहूँ तो अब और भी भद्दी दिखती हूँ। राधिका का जो जवाब आया माधव उसे सुनकर पल भर को स्तब्ध रह गया। फटी आंखों से उसे देखते हुए उसने चौंकते हुए हैरानगी से कहा, राधिका ये कैसी बात कर रही हैं आप, मेरा ये मतलब नहीं था। राधिका जो अब तक चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे देख रही थी, अब उसकी शक्ल और चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर हौले से मुस्कुरा दी। मैं तो मजाक कर रही थी, आपने तो गंभीरता से ले लिया। अच्छा मेरी छोड़िए, अपनी बताइए। लग तो बढ़िया रहे हैं और अब तो पहले से भी ज्यादा गुड लुकिंग, हैंडसम और स्मार्ट दिखने लगे हैं। अगर लग रहा हूँ तो शायद बढ़िया ही हूँगा। फीकी सी मुस्कान माधव के लबों पर आ ठहरी। इतने में एक गाड़ी वाला वहां आ गया तो दोनों ही साइड हो गए। कहीं बैठकर आराम से बात करें अगर आपके पास वक्त हो तो, माधव ने हिचकिचाते हुए कहा। उसकी बात सुनकर राधिका सोच में पड़ गई। अगर आप नहीं चाहती या कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, उसे परेशान देखकर माधव ने ही आगे कहा। राधिका के कानों में उसके शब्द पड़े और वो हड़बड़ाते हुए अपने ख्यालों से बाहर आईं।